नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत आज मुहम्मद रजा पहलवी नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। मुहम्मद रजा पहलवी रजा शाह के उत्तराधिकारी थे। इनका शासनकाल 1941 से 1979 ईस्वी के मध्य रहा है। प्रारंभिक स्थिति। मुहम्मद रजा का जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था और वह 21 वर्ष की आयु में गद्दी पर आसीन हुए। वास्तव में उसका राज्यारोहण अप्रत्याशित परिस्थितियों में हुआ और उसका प्रारंभिक शासनकाल युद्ध के वातावरण में एवं वैदेशिक नियंत्रण के बीच हुआ। रजा शाह ने देश में सुधार एवं निर्माण की जो योजनाएं बनाई थी वे अधूरी पड़ी थी। जर्मनी के साथ सहयोग का अंत हो चुका था तथा ईरान विदेशी सैनिकों का अड्डा बन चुका था। युद्धकाल में तटस्थता का स्थान मित्र राष्ट्रों के प्रति सहयोग ने ले लिया था, जिससे देश में आर्थिक कठिनाइयां उठ खड़ी हुई। प्रतिक्रियावादियों ने एक बार पुनः सिर उठाना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ मुल्लाओं और खानाबदोश जातियों ने अपने प्रभाव पुनः स्थापित किए तो दूसरी तरफ ईरानी साम्यवादियों ने तू देह दल का संगठन कर रूस के सहयोग में इसमें नई जान फूंक दी। ऐसी स्थिति में नए शाह के सम्मुख अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई जिनका समाधान आवश्यक था, परंतु उसने परिस्थितियों के अनुकूल कदम उठाया एवं शीघ्र ही अपनी राजनीतिक बुद्धिमता एवं निर्माण शक्ति का परिचय दिया। उसने परिस्थितियों के साथ चलने का निश्चय किया एवं मित्र राष्ट्रों से अपना सहयोग जारी रखा, परंतु युद्धोपरांत उसने शीघ्र ही देश में निर्माण कार्य की ओर ध्यान दिया और मौलिक सुधारों की योजना बनाई। कालक्रम से इन दिशा में उसे काफी सफलता मिली। द्वितीय महायुद्ध और ईरान 1941 से 1945 ईस्वी के मध्य। मुहम्मद रजा ने 29 जनवरी 1942 ईस्वी को ब्रिटेन एवं सोवियत रूस के साथ त्रिगुटीय संधि की। इसके अनुसार ब्रिटेन एवं रूस की फौज को ईरान में सभी सुविधाएं दी गई और इन देशों ने युद्ध की समाप्ति के 6 महीने बाद फौजों को हटाने का वादा किया एवं ईरान की स्वाधीनता को मान्यता देने का वचन दिया। 1942 ईस्वी के अंत में 30,000 अमेरिकी फौजें भी इराक पहुंच गई। ईरान होकर अब युद्ध सामग्री रूस पहुंचने लगी, परंतु युद्धकाल में ही ईरान की भावी कठिनाइयों का श्री गणेश हुआ। रजा शाह के हटने से उपद्रवकारियों को छूट सी मिल गई थी और देश में समाचार पत्र नाना प्रकार के प्रचार कर रहे थे। तू देह दल रूसी सहायता से भावी क्रांति की तैयारी कर रहा था और रूसी क्षेत्र में इसका प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था। युद्धकाल में ही 1944 ईस्वी के अंत में सोवियत रूस ने ईरान के साथ उत्तरी क्षेत्र में तेल खनन की सुविधाओं की मांग रखी, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद सैद ने इसे नामंजूर कर दिया। सोवियत रूस में इसकी भयंकर प्रतिक्रिया हुई जिससे मोहम्मद सैद को त्यागपत्र देना पड़ा, परंतु इसी समय मजलिस में डॉक्टर मुहम्मद मशद्दिक नामक सदस्य का प्रस्ताव पास हुआ जिसके अनुसार संसद की अनुमति के बिना ऐसी सुविधाओं की मंजूरी दंडनीय घोषित कर दी गई, परंतु इस घटना से रूस एवं उसके मित्र राष्ट्र के बीच विभेद प्रकट कर दिया। ब्रिटिश क्षेत्र में ईरानियों को अधिक स्वतंत्रता थी तथा निर्वासित प्रधानमंत्री जियाउद्दीन ने उस क्षेत्र में नए राष्ट्रवादी दल का संगठन किया था, अतः इस क्षेत्र में रूसी प्रचार का विरोध होता था एवं रूसी चालों की निंदा की जाती थी। वस्तुतः ईरान में रूसी एवं ब्रिटिश मतभेद युद्धकालीन सहयोग के बावजूद प्रकट था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस काल में भी ईरान को आर्थिक सहायता दी तथा 1943 ईस्वी के आरंभ में डॉक्टर आर्थर चेस्टर मिल्स पाव एक अमरीकी अधिकारी मंडल के साथ ईरान के आर्थिक सहयोग के लिए भेजे गए। इसके साथ ही सैनिक संगठन के लिए एक एक अमरीकी सैन्य मंडल एवं आंतरिक सुरक्षा वाहिनी के संगठन के लिए अमरीकी विशेषज्ञ कर्नल नॉर्मन स्वार्जकॉफ का भी ईरान में आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त कृषि, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में सुधार के लिए सभी अमरीकी विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए। अमरीकी प्रयास से 1 दिसंबर 1943 ईस्वी को तेहरान सम्मेलन में चर्चिल, स्टालिन तथा रूजवेल्ट ने ईरान की राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय एकता पर जोर दिया तथा हर प्रकार की आर्थिक सहायता का वचन दिया। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में दिलचस्पी लेनी शुरू की। यद्यपि 1945 ईस्वी के आरंभ में डॉक्टर मिल्स पाओ ने पदत्याग कर दिया, परंतु देश में अमरीकी विशेषज्ञ जबरदस्त तादाद में बने रहे। इस तरह युद्धकाल में ही ईरान में एक तृतीय श्रेणी का उदय हुआ और युद्धोपरांत शीत युद्ध की भूमिका निर्मित हुई। द्वितीय महायुद्ध का अंत एवं शीत युद्ध का आरंभ। अगस्त 1945 ईस्वी में जब द्वितीय महायुद्ध का अंत हुआ तो उस समय ईरान में ब्रिटिश, रूसी एवं अमरीकी फौजें मौजूद थी। 1942 ईस्वी की संधि के अनुसार ब्रिटिश एवं रूसी फौजों को युद्ध की समाप्ति के 6 महीने के अंदर अपनी फौजों को वापस बुलाना था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन के परराष्ट्र सचिव बेविन ने ब्रिटिश फौजों को खुजिस्तान क्षेत्र के अतिरिक्त सभी स्थानों से वर्ष के अंत तक हटाने की घोषणा की, परंतु रूस ने जापानी आत्मसमर्पण से 6 महीने बाद मार्च 1946 ईस्वी में फौजों को वापस बुला लेने का निश्चय किया। अमरीकी फौजों ने 31 दिसंबर 1945 ईस्वी को तथा ब्रिटिश फौजों ने 2 मार्च 1946 ईस्वी को ईरान छोड़ दिया, परंतु रूसी फौजें बनी रही। इसी बीच सोवियत सहयोग से ईरानी तुदेह दल ने दिसंबर 1945 ईस्वी में अजरबैजान में साम्यवादी गणराज्य स्थापित कर लिया और मूसाबाद में भी कुर्द गणराज्य की स्थापना की। इन दिनों ने शीघ्र ही आपस में कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। जनवरी 1946 ईस्वी में ईरान ने मामला नवोदित सुरक्षा परिषद में पेश किया, परंतु इसका परिणाम कुछ नहीं हुआ और इससे सोवियत दबाव बढ़ता गया। रूसी फौजें उत्तरी ईरान में जमी रहीं। अंत में ईरानी प्रधानमंत्री कावम सुल्तानेह ने मार्च 1946 ईस्वी में रूस की यात्रा की और 4 अप्रैल को एक समझौता किया, जिसके अनुसार उसने उत्तरी ईरान में एक सोवियत ईरानी तेल कंपनी की स्थापना का वादा किया और मामले को संयुक्त राष्ट्र से हटाने और साम्यवादियों को मंत्रिमंडल में रखने का भी वचन दिया और अजरबैजान में रूसी स्वार्थों को मान्यता दी तथा रूस को तेल खनन की सुविधाएं प्राप्त करने का दावा किया। अब रूसी फौजों ने ईरान छोड़ दिया। ईरानी मजलिस का नया निर्वाचन हुआ तथा नए मंत्रिमंडल में 3 साम्यवादियों को स्थान प्राप्त हुआ। तुदेह दल की शक्ति में काफी वृद्धि हुई और खुजिस्तान में भी आम हड़ताल हुए। इससे ब्रिटेन को काफी चिंता हुई और इसने अपनी फौजें ईरान में भेज दी। निर्वासित शेख खजल ने खुजिस्तान पर अपना दावा पेश किया। दक्षिणी ईरान के कबीलों ने भी विद्रोह कर दिया और स्वराज्य की मांग की। ब्रिटिश सहयोग के कारण इस विद्रोह को काफी सफलता मिली। विद्रोहियों ने प्रधानमंत्री से 3 साम्यवादी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की। फलतः अक्टूबर 1946 ईस्वी में उन्हें पदच्युत कर दिया गया। 15 दिसंबर 1946 ईस्वी को ईरानी फौजों ने अजरबैजान पर आक्रमण कर दिया तथा साम्यवादी गणराज्य को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही मजलिस ने 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को रूसी सुविधाओं को अस्वीकृत कर दिया। इस प्रकार अजरबैजान में रूसी कूटनीति को असफलता हाथ लगी और ब्रिटिश नीति सफल रही। वास्तव में अब तक विश्व 2 गुटों में विभक्त हो चुका था और अमेरिका एवं रूसी गुट के बीच शीत युद्ध आरंभ हो गया था। रूसी फौजों के हट जाने के पश्चात ईरान में अमरीकी सैन्य मंडल को सेना के पुनः संगठन की पूर्ण जिम्मेदारी दी गई, अतः रूस को इस क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि रूस एवं ईरान के बीच तनाव की स्थिति कायम हो गई तथा ईरान शीत युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका का पृष्ठपोषक बन गया। द्वितीय महायुद्धोपरांत ईरान। युद्धोपरांत आंतरिक समस्याएं। द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने पर ईरान में पुनर्निर्माण की भीषण समस्या उठ खड़ी हुई। रजा शाह ने देश में जो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक निर्माण का कार्यक्रम आरंभ किया था उसकी श्रृंखला टूट चुकी थी तथा देश पुनः अराजकता एवं अवनीति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। रजा शाह के कठोर शासन के अंत से उपद्रवकारियों की बारसी आ गई थी और सर्वत्र आतंक छा गया था। समाचार पत्रों एवं उग्रवादी आंदोलन पर भी कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। दक्षिणी ईरान के कबीले प्रायः खुदसर हो गए और स्वराज्य की मांग करने लगे। मुल्लाओं और प्रतिक्रियावादियों ने अपनी शक्ति काफी संगठित कर ली और मुल्ला कशानी के नेतृत्व में एक इस्लामी भ्रातृत्व दल स्थापित हुआ जिसके सदस्य काफी उग्रवादी थे। मजलिस में इनका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसके विपरीत ईरान के राष्ट्रवादी भी डॉक्टर मुस्तिक के नेतृत्व में काफी उग्र नीति के पक्ष में थे और वैदेशिक हस्तक्षेप से मुक्ति का आंदोलन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त ईरान के तुदेह दल की शक्ति पूर्णतया नष्ट नहीं हुई थी। इसे रूस का प्रोत्साहन एवं मदद प्राप्त था और इसका संगठन भी काफी शक्तिशाली था। इसका परिणाम यह था कि देश का राजनीतिक जीवन अशांत था, राजनीतिक हत्याएं बढ़ती जा रही थी और रजा शाह द्वारा स्थापित ईरानी राष्ट्रीय एकता खतरे में थी। नए शाह को अनुभव की कमी थी, परंतु इसने इन समस्याओं के समाधान में अपूर्व दूरदर्शिता एवं राजनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और उसमें काफी अंश तक सफल भी रहा। राजनीतिक सुधार। सर्वप्रथम शाह ने 1948 ईस्वी में एक संवैधानिक सभा का आयोजन किया एवं संसद में द्वितीय सदन अर्थात सीनेट की व्यवस्था की। इसकी व्यवस्था 1906 ईस्वी में ही की गई थी, परंतु इसे कार्यान्वित नहीं किया गया था। अब इसमें 60 सदस्य रखे गए, जिसमें 30 का मनोनयन शाह के हाथ में था। इस तरह से जनतांत्रिक यंत्र में शाह ने अपने प्रभाव की व्यवस्था कर ली। 4 फरवरी 1949 ईस्वी को तू देह दल के सरदार सदस्य ने शाह की हत्या का प्रयत्न किया, फलतः 5 फरवरी को इस दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसकी शाखाएं बंद कर दी गई तथा इसके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। 27 फरवरी को देश में शांति स्थापित करने के लिए सैनिक कानून की घोषणा कर दी गई। नवंबर 1949 ईस्वी में जब शाह ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की तो उसे अपने देश की राजनीतिक दुर्बलता का भान हुआ और प्रशासनिक सुधार के लिए कदम उठाए। भ्रष्ट अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई और प्रशासनिक कुशलता के लिए शाह ने जून 1950 ईस्वी में जनरल अली राजमारा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसने शासन में विकेंद्रीकरण पर जोर दिया तथा भ्रष्ट अधिकारियों को सैकड़ों की संख्या में पदच्युत किया। इससे शासन में दृढ़ता आई और उपद्रवकारियों का दमन किया। परंतु 7 मार्च 1951 ईस्वी को फदायन इस्लाम के एक सदस्य ने इसकी हत्या कर दी और इसका कार्य इस प्रकार अधूरा रह गया। इसके उत्तराधिकारी हुसैन आला तेल राष्ट्रीयकरण के बवंडर में फंस गए तथा उनका स्थान उग्रवादी नेता डॉक्टर मुजदिक ने ले लिया। डॉक्टर मुजदिक के समय में ईरान तेल राष्ट्रीयकरण के चक्कर में पड़ा रहा, अतः काल में आंतरिक सुधार का कार्य गौण हो गए। परंतु मुजदिक के आंदोलन के फलस्वरूप देश में जनतंत्र की शक्तियों का विकास हुआ और शाह की सैनिक एवं धार्मिक शक्ति का ह्रास हुआ। इस तरह इस काल में श्रृंखलाबद्ध सुधारों की गति अवरुद्ध हो गई और मुजदिक के पतन के बाद ही पुनः आरंभ हो सका। आर्थिक समस्याएं और उनका समाधान। युद्धोपरांत ईरान को अब एक भयानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। युद्धकाल में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई थी, परंतु युद्ध की समाप्ति के पश्चात सभी चीजों के मूल्य घट गए एवं बेकारी में जबरदस्त वृद्धि हुई। 1948-49 ईस्वी में देश की फसल मारी गई और दुर्भिक्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। युद्ध के समय में अमेरिका से आवश्यक वस्तुएं ईरान आती थी, अब उसमें भी कमी कर दी गई। बड़े बड़े जमींदारों ने लगान देना बंद कर दिया, जिससे सरकारी खजाना प्रायः खाली सा हो गया और कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो गया। अतः ऐसी स्थिति में रूस ने ईरानी व्यापार के बहिष्कार की नीति अपनाई, जिससे ईरान का आर्थिक संकट और भीषण हो गया। ईरान की वास्तविक संपत्ति उसके खनिज तेल में थी, परंतु उसकी अधिकांश आमदनी एंग्लो ईरानी कंपनी स्वयं हड़प जाती थी। इससे जनता में भारी क्षोभ था तथा मुजदिक के उग्रवादी समर्थक इस कंपनी के राष्ट्रीयकरण का नारा लगाने लगे। मजलिस में संपन्न व्यवसायियों एवं भूमिपतियों का बहुमत था, जो मौलिक सुधारों के विरुद्ध था। ऐसी परिस्थितियों में शाह तथा उसके अधिकारियों ने देश की आर्थिक प्रगति के लिए अनेक कदम उठाए और काफी अंश तक सफलता प्राप्त की। ईरान के आर्थिक उत्थान में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आरंभ में काफी सहायता की। 29 जुलाई 1947 ईस्वी को अमेरिका ने ईरान की $26 करोड़ अस्त्र शस्त्र एवं जलपोतों के क्रय एवं मरम्मत के लिए दिए। तत्पश्चात अमेरिकी विशेषज्ञों ने ईरान की बहुमुखी प्रगति के लिए एक योजना बनाई, जिसके आधार पर 15 फरवरी 1949 ईस्वी को मजलिस ने $65 करोड़ की लागत का एक सप्तवर्षीय योजना को स्वीकृत किया। इसके कार्यान्वयन के लिए अमेरिकी कंपनी ओवरसीज कंसल्टेड इंकॉर्पोरेटेड को ठेका दिया गया तथा उसकी देखरेख के हेतु कई अमेरिकी विशेषज्ञ ईरान भेजे गए। तत्पश्चात फरवरी 1950 ईस्वी में शाही जागीरों को भूमिहीनों के बीच वितरण का आयोजन किया, परंतु अर्थाभाव में ईरान की सप्तवर्षीय योजना को शीघ्र ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को शाह ने अमेरिका की यात्रा की, परंतु वे अपने उद्देश्य में असफल रहे। वस्तुतः चीन कुओमिंतांग सरकार के पतन से अमेरिका से विक्षुब्ध था तथा एशिया के नागरिकों को आर्थिक सहायता देने में उसकी आस्था नष्ट हो गई थी। फिर भी अक्टूबर 1950 ईस्वी में अमेरिका ने 25 करोड़ डॉलर का ऋण ईरान को दिया, परंतु इससे भी ईरानी समस्या का हल नहीं निकला। इससे ईरान में अमेरिका के विरुद्ध क्षोभ भर गया। योजना के अमेरिकी अधिकारियों को हटा दिया गया और 4 नवंबर 1950 ईस्वी को ईरान ने सोवियत रूस के साथ 20 करोड़ डॉलर की व्यापारिक संधि की, जिससे उसे काफ़ी मदद मिली, परंतु ईरान की आर्थिक समस्या की जटिलता खत्म नहीं हुई। ऐसी अवस्था में प्रधानमंत्री राजमारा ने आंग्ल ईरानी कंपनी से अधिक लाभांश प्राप्त करने हेतु वार्तालाप आरंभ किया। देश में इस समय तेल राष्ट्रीयकरण की मांग प्रबल होती जा रही थी, परंतु राजमारा ने उसका विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप वह दोस्त भक्तों के बीच बदनाम हो गया एवं 7 मार्च 1951 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या में उग्रवादियों का रास्ता साफ कर दिया। 15 मार्च 1951 ईस्वी को मजलिस ने सर्वसम्मति से ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा 20 मार्च को सीनेट ने भी इसे स्वीकृति दे दी। इस तरह 20 मार्च राष्ट्रीयकरण की तिथि बन गई। अप्रैल में खुजिस्तान में हड़ताल हो गई तथा कंपनी के अधिकारियों की हत्या हो गई। नए प्रधानमंत्री हुसैन आला ने राष्ट्रीयकरण को ईरान का घरेलू मामला घोषित किया, किंतु तेल उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए ब्रिटेन से वार्तालाप आरंभ किया, परंतु इस समय उग्रवादियों में पाश्चात्य विरोधी भावनाएं प्रबल थी। उन्होंने डॉक्टर मुज़दिक के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय मोर्चा कायम किया, जिसमें तूदेह दल, फदायन इस्लाम एवं मुज़दिक के समर्थक शामिल थे। ये किसी की बात सुनने को प्रस्तुत नहीं थे, अतः 27 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुसैन आला ने त्यागपत्र दे दिया और 28 अप्रैल को शाह ने डॉक्टर मुज़दिक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। डॉक्टर मुज़दिक ने शीघ्र ही अपने दृढ़ता का परिचय दिया और कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया। फलतः तेल के मसले को लेकर एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई।